श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 27। अध्याय है गीता का सार। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, जन्म का अर्थ क्या होता है थोड़ा समझना चाहिए। जन्म का अर्थ है जब शरीर हम धारण करते हैं और उस पर्टिकुलर शरीर से अपनी पहचान करने लगते हैं, और मृत्यु का अर्थ क्या होता है, अब उस शरीर को त्याग करके हम दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं और दूसरे शरीर को से पहचान कर लेते हैं। क्या आप लोग मर चुके हैं या आप लोग जीवित हैं? मैं सब प्रश्न कर रहा हूं तो आप लोग उत्तर तो बहुत सिंपल से देंगे, लेकिन अगर इस डेफिनेशन को अप्लाई किया जाए, जिस शरीर से हमारा जन्म हुआ था उससे हम अपनी पहचान कर रहे थे, अब वो कहाँ है भाई लोग? गायब। तो आपकी मृत्यु हो चुकी है ना, तो हम लोग सब मुर्दे बात कर रहे हैं। एक्चुअली ये शब्दों का थोड़ा सा खेल है। जब बोलते हैं बेटा तू जल्दी से बड़ा हो जा, जल्दी से अच्छे से खाओ नहीं तो तुम बड़े कैसे होगे, तो क्या माता को दुख होता है बोलते हुए? क्या माता बोलती है शुभ शुभ बोलो बेटा? नहीं बोलती। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो कहती है देखो मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। एक्चुअली क्या हुआ है, देह का अंतरण हुआ है। और जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम बोलते हैं कि देह का अंतरण हो गया है। हम क्या बोलते हैं, मर गए, खत्म हो गए, इसलिए लोग रोते। जैसे मैं उदाहरण के लिए थोड़ा विनोद का उदाहरण है, अगर कोई बोले एक लड़का है उसके पिताजी हैं, पिताजी शहर में काम करते हैं, माताजी घर में हैं, लड़का आता है और बोलता है पिताजी ने घर परिवर्तित कर लिया है अब वो दूसरे घर में रह रहे। नहीं नहीं इतना भी नहीं बोलता, खाली घर परिवर्तित कर लिया है। तो माता जी कोई रिएक्शन होगा नहीं, कोई बात नहीं, इस घर में रह रहे थे किराए पे, दूसरे पे चले गए, इस घर में रह रहे थे किराए पे, इस घर में रह रहे थे किराए पे, किराए ध्यान रखिएगा, ठीक है, अब ये घर ठीक नहीं था दूसरी जगह किराए पे रह रहे। और अगर ये बोल रहे बेटा आकर के कि माँ पिताजी ने घर त्याग दिया है, तो घबराहट हो जाएगी ना, घर त्याग दिया मतलब क्या है? तो शब्दों का घर त्यागेंगे, एक घर त्यागेंगे तभी तो दूसरा घर मिलेगा। जब बोले जा रहा है कि घर त्याग दिया है तो ये भावना रहती है कि अब दूसरा घर नहीं मिलेगा, कहाँ जाएंगे पता नहीं है। और जब ये बोला जा रहा है कि ये घर त्याग करके दूसरे घर में जाएंगे, गए हैं, ये घर परिवर्तित किया है, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ जा रहे थे कल वहाँ रह रहे थे। तो आप शब्दों का फेर देख रहे हैं, शब्दों की वैसे हमारी भावना में और हमारे ज्ञान में कितना परिवर्तन आता है। तो इस बात को भगवान उनके हृदय में जो शोक है कि अरे मेरे गुरुजन मारे जाएंगे, इसको निकालने के लिए भगवान क्या शब्द यूज कर रहे हैं, इससे पहले के श्लोकों में चर्चा किया था, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीर सत्र 2.13 में कि जिस प्रकार से बचपन से लेकर के हम थोड़ा बड़े होते हैं, फिर और बड़े होते हैं तो देह का अंतरण जीवन में देखते हैं, ऐसे मृत्यु के समय भी देह का अंतरण होता है। तो व्यक्ति क्या प्रश्न कर सकता है, अरे भाई ठीक है लेकिन इस समय तो मैं बहुत अच्छे देह में हूँ और हो सकता है मुझे आगे अच्छा देह नाम प्राप्त हो, दो डर हो सकते हैं, ये तो मुझे देह ही प्राप्त ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उदाहरण में वसुदेव जी बोलते हैं कि जैसे आप एक पाँव जमाते हैं तो अगला पाँव जमाने के लिए क्या करते हैं, ये पाँव जमा हुआ रहता है फिर अगला पाँव जमाते हैं, उसी प्रकार से अगला देह हम तैयार कर रहे हैं पहले से ही इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार। तो ऐसा नहीं कि देह नहीं मिलेगा, देह निश्चित मिलेगा, लेकिन दूसरा डाउट आ सकता है, मान लीजिए वो पसंद नहीं आया तो। आप में से कितने लोग अपना शरीर पसंद नहीं है, आप लोग कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं। अच्छा तो इस प्रश्न को थोड़ा दूसरी तरह सोचिए, हमारे शरीर में पसंद करने वाला क्या है, कोई उत्तर नहीं देना चाहता। और आप सब जानते हैं कि हमारे शरीर में पसंद करने वाला कुछ भी नहीं है, शरीर में, आत्मा की बात छोड़ दीजिए, शरीर की बात कर रहा हूँ। और फिर भी आपने पहले उत्तर में चुप रहे कि हम सभी को अपना शरीर पसंद है, हम शरीर त्यागना नहीं चाहते। इवन वृद्धावस्था में भी व्यक्ति शरीर त्यागना नहीं चाहता। तो इसलिए ये इस बात से डरना नहीं चाहिए कि अगला शरीर जो मिलेगा वो मुझे पसंद होगा या नहीं पसंद होगा, माया के प्रभाव से उसको भी पसंद होगा। तो खैर यहाँ भगवान बोल रहे हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। मतलब अगर आत्मा का देह के संग भौतिक शरीर के संग संयोग होता है तो अवश्यम भावी रूप से आत्मा क्योंकि नित्य है और शरीर अनित्य है तो एक ना एक दिन शरीर गिर जाएगा। ये बात को समझना चाहिए और इस कारण से शरीर के नुकसान की वजह से शरीर में कोई कष्ट आए या अपने कर्तव्य पालन करने के मध्य में तो व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि अर्जुन क्षत्रिय धर्म पालन करने के नाते उनको युद्ध करना था, अब सामने गुरुजन हैं, इसकी वजह से शोक नहीं करना चाहिए कि अब इनकी मृत्यु हो गई मेरे द्वारा, मैं इन पे बाण कैसे चलाऊंगा। और एक अद्भुत बात ये भी है कि उनके सामने भीष्म पितामह हैं जिन्होंने अपने गुरुजी से युद्ध किया था, उन्हीं गुरुजी से जिनसे उन्होंने युद्ध कौशल में सीखा था सब कुछ, कौन थे वो, तो उन्हीं के परिवार में ये उदाहरण था कि क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए उससे द्वेष के द्वारा नहीं, परशुराम जी से कोई द्वेष नहीं था, उन्होंने बस ये बोला था अब आप युद्ध करना ही चाहते हैं और आप आज्ञा दे रहे हैं युद्ध करने की तो फिर मैं करूँ, और उन्होंने बहुत मतलब कोई शक्ति ला के युद्ध किया। तो उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति को अपना धर्म पालन करना है उसमें शारीरिक कष्टों को की वजह से या शारीरिक भावनाओं की वजह से व्यक्ति को अपने कर्तव्य पालन में पीछे नहीं हटना चाहिए, ये बात भगवान बता रहे हैं, इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। और यहाँ ये भी बोल रहे हैं कि अगर इनकी मृत्यु होगी तो उसके बाद दूसरा जन्म का शरीर मिलेगा, आप इसके लिए क्यों शोक कर रहे हो, जब वो वृद्ध हैं तो वृद्ध शरीर तो अच्छा नहीं होता है, तो ये अगर ये युद्ध में मारे जाएंगे अपना धर्म पालन करते हुए तो उनके स्वर्ग की प्राप्ति होगी, आप क्यों उसमें घबरा रहे हो, ये सारी बातें हमें बता रहे हैं। तात्पर्य को देखेंगे, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। बहुत सारी बातें हैं इस पर बोल सकने के लिए, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये इसी को कर्म बंधन कहते हैं, हम कुछ भौतिक कर्म करते हैं और उसकी वजह से हृदय में इच्छाएं आती हैं फिर वैसे कर्म करने के लिए, और इच्छाएं आ जाती हैं इस जगत को भोगने के लिए, और फिर भगवान फिर एक शरीर का निर्माण करवाते हैं, ठीक है तुम इस तरह से संतुष्ट नहीं हो अब अगला जन्म प्राप्त करो, फिर से भोग करने की। समझ में आ रहा है कुकर्म बंधन कैसे लगता है? पाप और पुण्य, शुभ कर्म अशुभ कर्म हर व्यक्ति से होता है, और इसके द्वारा व्यक्ति अगर भक्ति नहीं करता है उसके हृदय में कर्म वासना जागृत होती है। अब इसको हम दूसरे एंगल से भी सोचेंगे, यानी कि कर्म करना तब जब मुझे भोग के लिए कुछ मिले, मेरा कुछ फायदा हो तब मैं कर्म करूँगा, मेरा इंसेंटिव होना चाहिए तब मैं कर्म करूँगा। ये भावना से जब हम ग्रस्त रहते हैं तो ये हमारे अगले शरीर के निर्माण करने का आधार है। अब इसको थोड़ा दूसरे एंगल से समझे, जो अभी मुझे मिला है कुछ दिन पहले। आप सब लोग सुनते हैं, हम लोग बोलते हैं और सुनते भी हैं और सोचते भी हैं कि हम ये शरीर नहीं हैं, बुद्धि के द्वारा हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रायः पूछा जाता है भाई दरवाजे के बाहर निकल के फिर वही शारीरिक चेतना में आ जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को बताया गया है चैतन्य चरितामृत में श्लोक कोट करते हुए, अविद्या कर्म संज्ञयः। भगवान विष्णु की तीन शक्तियां हैं, एक भगवान की अंतरंगा शक्ति, मुख्य रूप से अंतरंगा शक्ति, दूसरी जीव शक्ति हम सब लोग, और माया शक्ति या अविद्या शक्ति। इस अविद्या के द्वारा हमारे हृदय में कर्म करने की भावना आ जाती है। कर्म करने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा इनएक्टिव होती है आध्यात्मिक जगत में, भोग से प्रेरित होकर कर्म करने की इच्छा, और भोग से प्रेरित होकर के कर्म करने के कारण हमारे चित्त में ये भावना बढ़ जाती है कि हम ये शरीर हैं, अविद्या का रोग बढ़ जाता है। कि मैं बहुत टेक्निकल शब्द यूज़ कर रहा हूँ या समझ में आ रहा है? सिंपल सा उदाहरण, जैसे किसी को पीलिया है तो पीलिया वाले व्यक्ति को अगर रसगुल्ले खिलाए जाएँ गोवर्धन के सफ़ेद वाले तो वो भाग जाएगा, वो नहीं चाहिए, लेकिन वही उसका इलाज है, क्या वो पसंद करेगा? कचौड़ी पूड़ी। अब बीमारी की वजह से उसका इंक्लिनेशन क्या है खाने का? पूड़ी कचौड़ी, और उससे क्या होगा? पीलिया का रोग और बढ़ जाएगा। यानी कि अगर अपनी इंस्टिंक्ट्स को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, जो तुम्हारे मन में आ रहा है वो हिसाब से कर चलेगा तो उसकी बीमारी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ज्ञान के आधार पे वैद्य की बात मान करके रसगुल्ले या मीठी चीज़ खाएगा तो वो बीमारी हट जाएगी। तो ये जो हरि नाम है, हरि कथा है, भगवान की सेवा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना है, तो हम भगवान की अंतरंग शक्ति के प्रभाव में आते हैं, और फिर अविद्या अपने आप नष्ट होती है और व्यक्ति अपने आप समझ पाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। और इसका अनुभव कैसे करेंगे? किसी साइंटिस्ट को समझाने का प्रयास कीजिए कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा हैं। बहुत बुद्धि है लेकिन सूक्ष्म बुद्धि नहीं, कितना भी आप तर्क कर लीजिए उसको नहीं समझ सकते। आप में से कितने लोग यहाँ पे पीएचडी हैं? एक प्रभुपाद जी बोलते हैं रिक्शा वाला भी भारत में समझता है कर्म का सिद्धांत, रिक्शा वाला। हाँ, और एक्चुअली सत्य बात है, मैं एक रिक्शे वाले से मिला था, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उसने मुझे बोला कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला और उसने मुझे बताया कि मैं इतना दुख उसलिए भोग रहा हूँ क्योंकि पिछले जन्म में मैं चंडाल था। ये कर्म का सिद्धांत जो बड़े बड़े विद्वानों को समझ में नहीं आता, सो कॉल्ड विद्वान जो कि नास्तिक है, वो तो रिक्शा वाला समझता है। आप देख सकते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रद्धा का ज़्यादा महत्व है, बुद्धि का कम है। ठीक है, तो इसका इलाज क्या है? भगवान इसका इलाज भगवद गीता में बोलते हैं, आप जो भी कर्म कर रहे हैं वो मुझको समर्पित कर दीजिए। जब आप इसे कर देंगे तो आप अपने आप ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे, शुभ और अशुभ दोनों से मुक्त हो जाएंगे, और आप मेरे पास आ जाएंगे। बल्कि क्या बोलते हैं, निश्चित ही मेरे पास आ जाओ। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। आपके घर में कोई बीमार है, मान लीजिए आपके भैया बीमार पड़ गए थे, आपके भैया को हॉस्पिटल में हमने भेजा, बहुत खर्चा किया, और फिर वो बीमारी वापस आ गए, आप डांटेंगे ना उनको? नहीं डांटेंगे, नहीं डांटा नहीं, क्या बोला चाहिए, निराश नहीं होंगे? उनको जिसके लिए भेजा बोला, अरे वहाँ मैंने खूब लोगों से दोस्ती कर ली, मैंने थोड़े बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिए, सब कुछ कर लिए, अरे तुमको भेजा किस लिए था? बीमारी ठीक करने के लिए। फिर आप लोग क्या करेंगे, वापस जाओ, फिर वो वापस आ जाएगा, फिर ठीक नहीं हुआ फिर क्या बोलेंगे, अब वापस जाओ। आप लोग समझ गए ना उदाहरण, ये उदाहरण मैं तैयार करके नहीं आया, बहुत सारी बातें भगवान ऐसे ही दे दे। इसको एक महाराज जी बोल रहे थे, बहुत मजेदार थे, बोल रहे थे कोई व्यक्ति जाए बहुत सुंदर हॉस्पिटल, आजकल तो हॉस्पिटल बड़े सुंदर होते हैं, वो कहे कि मैंने 2-3 गर्लफ्रेंड्स बना ली, बड़े सुंदर नर्सिस थी वहाँ, लेकिन बीमारी ठीक नहीं करी, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा, ऐसे ही बोला महाराज सबके सामने बोल रहे थे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बात को। वॉट इज द पॉइंट, आप इस जगह में बहुत धनवान हो गए, रूपवान हो गए, उसके बाद क्या हुआ, फिर मृत्यु, उसके बाद फिर जन्म, बहुत प्रसिद्ध हो गए उसके बाद फिर मृत्यु फिर जन्म, तो सारा कुछ मटिया मेट हो गया ना। हाँ, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, इनकम्प्लीट भी रह गई, अगली बार से हम हायर चेतना से शुरू करेंगे, इसलिए हमें घबराना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भौतिक चीज़ों के संग नहीं होता। एक चीज़ मैं बोलना चाह रहा था, ये भी एक अच्छा मेडिटेशन आया था, कलयुग में आप देखेंगे बहुत सारे धोखेबाज गुरु कुछ समय के लिए आते हैं, ज़्यादा मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन और उसके बाद वो बुझ जाते हैं। मैं बुझ इसलिए शब्द यूज़ करूँगा, इनको बोला जाता है जुगनू, जुगनू समझते हैं आप लोग, जुगनू रात में बहुत चमकता है, लेकिन सुबह आने तक कुछ थोड़ी देर बाद वो सब उसी, तो हम बोले तारी ही तो बहुत बड़े व्यक्ति हैं, इतने सारे इनके फॉलोअर्स हैं, बड़े चमक रहे हैं ये, और उसका देखते हैं टाइम टाइम खुश। और आप देखिए भगवद गीता का विज्ञान, भगवान क्या बोल रहे हैं, सूर्यदेव को दिया परंपरा में, अर्जुन तक गया, उसके बाद व्यासदेव जी के द्वारा उस वाली परंपरा में हमारे प्रास प्राप्त हो रहा है। और आप सोचिए कि कितना अद्भुत है ये परंपरा का सिस्टम। मान लीजिए हम सबकी आज मृत्यु हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, फिर भी भगवद गीता आप लोगों के पास है, आप इस परंपरा को जीवित रख सकते हैं, है ना, कितना अद्भुत बात। इसीलिए शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण, केवल पर्सन डिपेंडेंट नहीं हो। मान लीजिए हमें प्रचार करने के लिए मेरी मृत्यु हो जाए, तो और भक्तों के पास गीता है ना प्रचार करने के लिए, कितने प्रचारक की मृत्यु हो गई है, हो ही जाती है, लेकिन ज्ञान नष्ट नहीं होता, ये भगवत कृपा है हमारे। तो इसीलिए हम केवल गुरु के पर ही विश्वास नहीं करते, इस पर कैसे विश्वास करते हैं, गुरु साधु शास्त्र। जन्म मरण के इस चक्र से व्यथा हत्या वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य हैं। अपरिहार्य मतलब अनअवॉइडेबल, ऐसा नहीं है कि अब कोई आतंकवादी आ जाए तो बोलेंगे क्या आप अपनी गन को इधर रखना चाहते हैं, क्या आप मेरी बात मानेंगे प्लीज, थोड़ा यहाँ पर गन मत चलाइए, कैसे समझाया जा सकता है ऐसे व्यक्ति, ऐसे नहीं समझाया जा सकता। अगर ऐसे समझाया जा सकता तो वो गन लेके आता ही नहीं, वो माला लेके आता तब करने उस सम टाइम, मतलब इन सब परिस्थितियों में राजा को कठोर दंड देना चाहिए। अब आप लोग आश्चर्य करेंगे, महाभारत में एक प्रकरण आता है, प्रहलाद महाराज से पूछा जाता है राजा को कब दंड देना चाहिए और कब मैत्री करनी चाहिए, तो उन्हें बोला राजा को हमेशा दंड नहीं देना चाहिए, नहीं तो सब लोग उसे डरने लग जाएंगे, और राजा को हमेशा प्रेम भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी बात को गाली नहीं समझेगा। कौन बोल रहे हैं, प्रहलाद महाराज, महाभागवत। लेकिन जगत में जब इस प्रकार से कार्य करना पड़ता है, तो ये भौतिक जगत में हम रह रहे हैं, यहाँ सब लोग ऐसे नहीं है, सत्यनाथ भी सुनी चेना तरह अभी सहसण नहीं, तो ऐसे कार्य करना पड़ता है। भगवान बोल रहे हैं आप धर्म के लिए युद्ध करिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, तो इसको समझाने की जरूरत नहीं है। अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था, इसमें हमारे लिए क्या शिक्षा है, क्या अब हमको भी तीर कमान चलाना सीखना है, ये नहीं आवश्यक है। लेकिन हमारा गन अलग प्रकार की है, ये हरे कृष्ण मंत्र के गन है, और अगर इसमें आपको परिवार वाले भयभीत करें तो भयभीत होना नहीं चाहिए। क्या तुम तो बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, ये हरे कृष्णा कर रहे हो, तो फिर भयभीत नहीं होना चाहिए। या और कोई भी बोलो, अरे तुम लोग ये उम्र है हरे कृष्णा करने की, जब हमारी उम्र में आना तो करना, जब कान से सुनाई नहीं पड़े, जब मुंह से बोले नहीं, तब करना। और उनको बोलो आप करोगे, आप करोगे नहीं बेटा, हमसे तो अभी काम क्या है, हो गया हमारा तो समय निकल गया। तो इस प्रकार की बातों से अपने भागवत धर्म को नष्ट होने नहीं देना चाहिए। आप लोग को ऐसा कभी पता नहीं, ऐसा अनुभव होता हो कि नहीं, कि जिस दिन हम कृष्ण की सेवा ना कर सकें या सफिशेंट सेवा ना करें, तो शाम को लगता है कि हमारा शाम खराब हो गई। स्पेशली मुझको अगर शाम को हरी कथा ना करने को मिले तो मुझे बहुत खराब लगता है। जैसे यहाँ पे प्रचार के लिए आते हैं या फिर आश्रम में भी, हमारे भक्तों का भी अनुभव है कि बहुत बोर लगता है, ऐसा लगता है कि मरघट में आ गए ना क्या आ गया। ऐसा होना चाहिए, शाम को हरी कथा हरी कीर्तन, उस पर हमारा भी प्लानिंग चल रही कि कार्तिक में हम लोग यहाँ पर रोज़ दीपदान का आयोजन कर सकते हैं, अगर आप लोग आएँ चाहें तो। लेट्स सी, आप लोग आओ या ना आओ, मेरे मन में तो सेवा हो जाती है कि मतलब तुम्हें सारे भक्त आ रहे हैं, सब आरती कर रहे हैं, आई बिकम वेरी एक्साइटेड इन दैट। मुझे बहुत आनंद आता है कि इतने सब मंगलो मंगल आरती आ रहे हैं और सब वो कीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान मन की सेवा को भी स्वीकार कर ले, हो सकता भगवान सुन ले, हो सकता आप लोग सुन लें, आप लोग सुन रहे हैं ठीक है। ये बहुत अच्छा है, पता है हम लोग अगर भगवान की सेवा ना भी कर सकें, इस प्रकार से मेडिटेशन करते रहे, मैं सेवा करूँगा, ऐसे जाऊँगा, ऐसे करूँगा, भगवान इससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और सही में बताऊँ, भगवान इच्छा भी पूर्ण करते हैं। जैसे अक्रूर जी जब आ रहे थे, आप अक्रूर मनोरथ सुन सकते हैं, जब हम आगे अपने ग्रुप में पोस्ट करेंगे, बहुत सुंदर है। अक्रूर जी जब भगवान को लेने के लिए आते हैं तो सोचते हैं मैं वहाँ पर जाऊँगा, भगवान कृष्ण बलराम मेरा आलिंगन करेंगे, और सब भगवान रजिस्टर कर रहे हैं क्या क्या चाहते हैं वो, और मेरे को चाचा बोलेंगे, मुझे खाने के लिए कुछ देंगे, और सब कुछ एग्जैक्टली भगवान वैसा करते। आप अनुभूति का नज़र भी लगा नहीं सकते कि जैसे जैसे भगवान के बारे में सोच रहे थे कि भगवान ऐसा आदान प्रदान करेंगे, ऐसे ही भगवान ने आदान प्रदान किया उनसे। जब सुदामा आ रहे थे तब भी वो सोच रहे थे कि अपने अपना पुराना पास टाइम सोच रहे थे, पास टाइम कह लीजिए, आदान प्रदान भगवान से जब वो दोस्त गुरुकुल में थे। और कितना कृष्ण आकर्षण व्यक्ति है, ऐसा अगर किसी को एक बार ऐसा अनुभव हो जाए तो कैसे कृष्ण को भूल सकते। तो इस प्रकार का मनोरथ होना चाहिए। जैसे हम महाप्रभु के भक्तों के बारे में सुनते हैं, शुद्ध भक्तों के बारे में सुनते हैं, कैसे भगवान से प्रेम करते हैं, तो क्या हमारे हृदय मनोरथ नहीं आएगा सर कि हम भी भगवान से ऐसे प्रेम कर सकें, हम भी ऐसी सेवा कर सकें। इसीलिए भगवान की कथा सुनना बहुत आवश्यक है हरिनाम के साथ साथ, क्योंकि आपकी इच्छाएँ परिवर्तित होने लगती हैं। मैं इस पर एक और चीज़ बोलना चाह रहा था कि अर्जुन भगवान के संग 11वें अध्याय में बोलते हैं उस बात को कि भगवान आप अपना विश्व रूप में को दिखा रहे हो, मुझे क्षमा कर दीजिए, खाना खाते समय, सोते समय, ऐसे बातचीत करते समय मैंने आपको बहुत आपके प्रति अपराध कर दिया। बात तो बहुत सिंपल लग रही है आपको, इतना सुंदर बात मेरे हृदय में इस बात को भगवान ने प्रकट किया कि 125 साल जब भगवान रहे हैं जगत में, अर्जुन के संग उन्होंने कितने युद्ध किए, केवल 2 बार। एक बार खांडव पस्त्र का जो जंगल था उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन थे और इंद्र देवता से युद्ध किया था, और 18 दिन का युद्ध यहाँ पे किया। बाकी टाइम कैसे बताया भगवान कृष्ण के साथ, खाते पीते आनंद लेते। तो रियल जो अर्जुन का संबंध था केवल युद्ध का, और क्षत्रिय आप भी क्षत्रिय हो मैं भी क्षत्रिय हूँ वो नहीं था, वो तो बाह्य कह सकते हैं, रियल संबंध एक मित्र का था। और इतना था, महाराज समझा रहे थे कि भगवान जो है वो हस्तिनापुर में ही रहते थे, तो रानियाँ सोचती थी कि अगर अर्जुन मतलब स्त्री होते तो अच्छा रहता, क्योंकि वो फिर द्वारका में तो रहते भगवान, इतना प्रेम करते थे। अरे इतना सुंदर व्यक्ति से अगर हमें वापस संबंध स्थापित हो जाए तो कितना सुंदर है। कि आज हम प्रसाद ले रहे थे तब मुझे बात स्मरण आया कि कैसे कृष्ण बलराम जाते हैं और यमुना जी के तट पे खड़े हो जाते हैं, खट समझा की जगह बैठ जाते हैं, और सब लोग अपना टिफिन बॉक्स खोलते हैं, तो कोई जो ग्वाल बाल है वो अपना पत्थर को बना लेता है थाली, कोई जो है वो फूल होते हैं ना, फूल की पत्तियों को बिछा कर उसको अपने थाली बना लेते हैं ऐसे करके, और सब लोग कृष्ण के संग भोजन कर रहे हैं। तो कितना सुंदर, अगर ऐसा इस प्रकार की चीज़ों को हम, लीलाओं को हम बार बार सुनते हैं तो धीरे धीरे करके, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके हमारा भी आकर्षण भगवान के प्रति एक व्यक्ति के रूप में होने लगता है। और ये बहुत गुह्य है, बहुत गुह्य बात है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम को लिखा गया था, क्षमा कीजिएगा लिखा शब्द यूज नहीं करना चाहिए, उन्होंने अपनी सिद्धि की अवस्था में, समाधि की अवस्था में इन सारी लीलाओं का दर्शन किया है, या प्रथम स्कंद को देख सकते हैं, और सभी लीलाओं का अंकन संकलन किया। लिखना तो मतलब वो क्या, मैंने कुछ कविता लिख रहा हूँ मैं काव्यात्मक रूप से, ऐसा नहीं। कितना अद्भुत है ना, सब कुछ रियलाइज्ड ग्रंथ है ये। भगवान कृष्ण की लीलाओं को साक्षात देख रहे हैं, फिर उनको संकलन कर रहे हैं, और वो भी स्वयं व्यासदेव जो भगवान के अवतार हैं। कितना अद्भुत ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। वह विधि को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिनसे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। ये भी बहुत सुंदर बात है। इसमें एक पास टाइम है चैतन्य महाप्रभु का, महाप्रभु कीर्तन करते थे शिवास आंगन में, और एक दिन कीर्तन करते करते एकदम से शिवास ठाकुर को लगा कि कुछ रोने की आवाज़ आ रही है। मैंने सुना था ये पास टाइम में शायद, और बाहर गए तो मालूम चला कि उनका पुत्र का देहांत हो गया। तो पत्नियों को बोले चुप, एकदम चुप, तुरंत रोना बंद करो, अगर आप भी रोना बंद नहीं करोगे तो मैं सीधे जाके गंगा जी में कूद जाऊंगा। तो बेचारी सब एकदम घबरा गए, चुप हो गई, बोलने लगे कि ठीक है, भगवान महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, इसमें अगर इसका मृत्यु देहांत हो गया उससे अच्छा क्या हो सकता है। अब ऐसा बोल रहे हैं लेकिन इतना करने की शक्ति है हमारे पास। इट्स गुड टू से लाइक दिस, इट्स गुड बिकॉज हम इतने आसक्त नहीं हैं कृष्ण में, बल्कि कोई चाचा तब मर जाएंगे तो कहेंगे अरे जप नहीं करना, हम सूतक लग गए। मैं उनको बोला मान लो आप मर गए इस बीच में, तो फिर एक व्यक्ति के ताऊ जी मर गए थे तो उसने जब करना बंद कर दिया, हमने कहा आप, आपकी मृत्यु नहीं आ सकती इस बीच में, फिर क्या करोगे। एनी हाउ, तो इस प्रकार की भावना से नहीं, लेकिन अतिशय मतलब भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, जरा सा भी उनके सुख में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए। फिर महाप्रभु को मालूम चल जाता है, कहते हैं लग रहा है कुछ गलत हुआ है, उनको सब पता है लेकिन फिर भी वहाँ पर ऐसे बोलते हैं मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हुआ है। फिर शिवाज ठाकुर जी के पास वो आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, फिर महाप्रभु भी अद्भुत हैं। इसके बाद पता है क्या होता है, उस बच्चे को जब जीवित कर देते हैं, उठो उठो क्या कर रहे हो, क्या क्यों सो रहे, उठ जाओ। फिर वो बोलना चालू करता है ये कौन से जन्म के पिता थे, बड़े स्टाइल से चित्रकेतु महाराज के बेटे के तरह, और आप भगवान मैं तो आपका दास हूँ, आपकी इच्छा से मैं इनके यहाँ, मेरा परम सौभाग्य था श्रीवास ठाकुर के घर में मेरे को जन्म लेने का मौका मिला, और आप कीर्तन कर रहे थे उसमें मैंने शरीर त्याग दिया, आपकी आपकी इच्छा से मैं दूसरे गंतव्य को जा रहा हूँ। तो खैर उसके बाद सब लोग अपना शोक त्याग कर देते हैं। लेकिन ये भी बहुत सुंदर बात है कि भगवत इच्छा से ही हम सबको ये शरीर प्राप्त हुआ है। अब हमको पता नहीं हमने पहले जन्म भक्ति करी या नहीं करी, लेकिन इस जन्म में ज़्यादा भक्ति का बारे में हम जानते नहीं थे, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, और फिर भी भगवान ने हमारे सत्य मेरे सत्कर्मों को, आप समझ सकते हैं क्या अर्थ है, कायस्थ परिवार में जन्म लेने का क्या अर्थ होता है, आप समझ सकते हैं, सत्कर्मों को देखते हुए या ना देखते हुए भी हमें भक्ति करने का मौका दिया। तो क्या विश्वास हमारा जागृत नहीं होगा कि हम अभी भक्ति करेंगे या तो भगवान के धाम पहुँच जाएंगे, फिर अगली बार हमको और अच्छा मौका देंगे भगवान। वैसे इससे अच्छा मौका कैसे मिलेगा, इस कौन में आप प्रभुपाद जी के आश्रय में के भक्ति करने का मौका मिलता है। तो अपनी शक्ति को बचा करके अधिक से अधिक भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। और अंत तो गत्वा जब ये शाम आएगी, समझ रहे हैं मैं बातों को, तो आपको हृदय में एक संतोष होना चाहिए, कम से कम इस जन्म में मैं कुछ तो कृष्ण की सेवा कर सका। दुख इस बात का नहीं कि मृत्यु आएगी, दुख इस बात का है कि मानव जीवन प्राप्त करके हम लोग कृष्ण का भजन नहीं करें, ये बहुत बड़ा दुख है। तो अगर आप किसी परिवार वाले के दुखी हो, के लिए दुखी हो, जो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो दुखी क्यों होना चाहिए? अरे वो भागवत नहीं पढ़ पाए, वो जप नहीं कर पाए, भगवान का प्रसाद नहीं पाए, तब तो दुखी होना चाहिए। लेकिन अगर वो भजन कर पाए तब दुखी हो, दुखी इन द सेंस उनके संग से दूर हो गए वो अलग बात है, वो अलग प्रकार का दुख है, लेकिन खेद या शोक की आवश्यकता नहीं। तो इस बात को भगवान बार बार बोल रहे हैं कि शोक मत करो, शोक मत करो। और आप देखेंगे जब अपने धर्म का पालन व्यक्ति करता है तो उसको शोक नहीं होता। जैसे एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़े, इसका धर्म है, और अगर अच्छे से पढ़े, पूरा प्रयास कर रहा है, उस जानता है मैंने पूरा प्रयास किया है, तो नंबरों से उतना प्रभावित नहीं होता। यह कहना चाहिए नहीं, होना चाहिए, अगर उसमें बहुत प्रेशर नहीं किया है माता पिता ने। तो ये कर्तव्य भावना मानव जीवन का उपहार है। पशुओं में कर्तव्य भावना नहीं हो सकती, इसलिए वो धर्म का आचरण भी नहीं कर सकते। तो हम लोग को ये मौका मिला है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। कर्तव्य बुद्धि से, भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। थैंक यू। समय हो गया, कोई प्रश्न है किसी का तो मैं दे सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? एक सेकंड, आई डोंट वांट टू बी इनअटेंटिव टू यू, एक मिनट। ये तो वही हो जाएगा कि व्हाट्सएप वाला हो जाएगा।